सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बरीश सक्सेना और आज हम चर्चा करेंगे भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति पर। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ अजय बनर्जी। अजय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
जैसा कि अजय जी आपको पता है कि भारतीय नौसेना में बहुत ही तेजी से विस्तार हो रहा है और अगर हम वर्ष 2026 की बात करें तो बहुत सारे नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और यह योजना है कि हर 6 सप्ताह में एक नया जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हो और वर्ष 2035 तक 175 से 200 जहाजों का बेड़ा तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगर हम आज की 3 अप्रैल की बात करें तो आज स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS तारागिरी को भी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आप इस बारे में और क्या कहना चाहेंगे?
पहले तो देखिए, आपने बता ही दिया है कि नौसेना इस साल कितने सारे जंगी बेड़े शामिल करेगी अपने फ्लीट के अंदर। ये जो जंगी बेड़े हैं ये नंबर पे ना जाएं, मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, नंबर से बड़ा है टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो टेक्नोलॉजी इस टाइम हम बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजी के 3 पहलू हैं। पहला ये कि जंगी बेड़े बनाने की यानी वॉरशिप बनाने की जो गति है वो बढ़ी है। दूसरा ये कि नए सेंसर हथियार ये सब कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आज तारागिरी आज जंगी बेड़े में शामिल हुआ है और ये जो युद्धपोत है ये नीलगिरी क्लास का युद्धपोत है। नीलगिरी क्लास के 7 युद्धपोत बनने हैं। तारागिरी चौथा है, इसके बाद 3 और हैं, उनमें से एक दूनागिरी अभी नेवी को दे दिया गया है। उसकी कमीशनिंग में करीब 2 महीने लगेंगे। इन युद्धपोतों की खासियत क्या है, पहले टेक्नोलॉजी पे बात करूंगा। इन युद्धपोतों में रडार लगे हुए ऐसे कि ये दूर दूर तक छोटी छोटी चीजें पकड़ सकते हैं। पहले तो रडार हो गए जो दुश्मन की चीजों को पकड़ेंगे
जी।
उसके बाद उन पे हमला कैसे बोला जाएगा, ये मल्टीलेयर्ड हमले की तैयारी है इन शिप्स में। बिल्कुल नजदीक से कोई चीज होगी तो उसे कहते हैं क्लोज इन वेपन सिस्टम्स। उसके लिए बंदूकें, हथियार, आर्टिलरी गन टाइप सिस्टम होता है, नेवल गन्स उनको बोलते हैं, वो इन युद्धपोतों के डेक पर इंस्टॉल होती हैं। दूसरा आ गया कि कोई हमला 70-80 किलोमीटर दूर पर कोई खतरा है, उसके लिए उसको बोला जाता है सरफेस टू एयर मिसाइल। वो शिप के अंदर इंस्टॉल्ड होती हैं, 70-80 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती हैं। इसके बाद अगला स्टेप आता है इनसे बड़ा, वो है ब्रह्मोस। पिछले कई 10-12-15 साल से शिप्स के ऊपर ब्रह्मोस लगाई जा रही है। इस जंगी बेड़े पे भी, युद्धपोत पे भी लगाई जाएगी ये ब्रह्मोस और लगी। तो ब्रह्मोस की मारक क्षमता जैसे आप जानते हैं तकरीबन 300-350 किलोमीटर की है और ऑपरेशन सिंदूर में जो लैंड से इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस फायर करी थी उनका सबने सारे श्रोताओं उसके बारे में अच्छे से जानते हैं कैसे वो ब्रह्मोस ने क्या नुकसान और क्षति पाकिस्तान के एयरबेसिस को पहुंचाई। ये तो हो गया टेक्नोलॉजी का पार्ट जो इसकी लड़ाई का पार्ट है। अब दूसरा टेक्नोलॉजी का पार्ट है इन युद्धपोतों को बनाने के लिए क्या करा जा रहा है। एक तो तारागिरी और नीलगिरी क्लास के जो वॉरशिप हैं इनमें तकरीबन 70% जो है वो इंडिजिनस यानी हमारा खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट उसके अंदर इंस्टॉल्ड है। हम श्रोताओं को ये भी बता दूं, अब कोई पूछेगा कि जी बाकी क्या रह गया, सबसे बड़ी चीज है इंजन। इंजन हम अभी बना नहीं पा रहे हैं, जैसे हमारे युद्धपोत जो हैं या फाइटर जेट हैं उनमें भी इंजन विदेशी होता है, इसमें भी इंजन बाहर से आया हुआ है। जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है वो इंजन बनाती है, इनको कोडैक बोलते हैं, कंबाइंड गैस एंड डीजल ऑपरेशन इंजन। तो ये इंजन से अभी हम काम चला रहे हैं। बाकी 75% जो है वो भारत में बन रहा है, ब्रह्मोस भारत में बन रही है, मिसाइलें भारत में बन रही है, क्लोज इन वेपन सिस्टम भारत में बन रहे हैं। स्टील जो होता है सबसे बड़ी बात, DMR-249 स्टील को 20 साल से हम खुद इंडिया में बना रहे हैं। जो वॉरशिप ग्रेड स्टील होता है, जो पानी में स्टील जाता है युद्धपोत में लगता है, वो स्टील फर्क होता है, जो हमारे घर में स्टील है वो फर्क होता है, डिफरेंट उसकी कंपोजिशन होती है। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो कि युद्धपोत को बनाने में यूज हो रही है उसे बोलते हैं मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। नीलगिरी क्लास जैसे मैंने बताया 7 युद्धपोत बनने हैं, नीलगिरी क्लास के 7 युद्धपोतों में मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन बन रही है। अब मैं इसको समझा दूं आपके श्रोताओं को। मॉड्यूलर होता है कि जैसे मान लीजिए 250-300 टन का एक पार्ट बना, उसके अंदर से खांचे बने हुए हैं केबलिंग के, पाइप्स के जाने के लिए, पहले से वो बन के बाहर से आया। जैसे आपने देखा होगा पुल बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, प्रीकास्ट बनते हैं, वैसे ही प्रीकास्ट होता है और इनको जोड़ा जाता है, एक टेक्निक होती है उससे जोड़ा जाता है, इसे मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इससे फायदा यह होता है कि जहां हम एक युद्धपोत बनाने में करीब 9-10 साल लग रहे थे वो कम होकर अब 6 साल पे आ गया है। दूनागिरी जो अभी मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया, नीलगिरी क्लास का शिप दूनागिरी 72 महीने यानी 6 साल के अंदर तैयार हो गया है। 10 साल से टाइम कम होकर 6 साल हो गया। तो ये 3 टेक्नोलॉजी की बड़ी चीजें इस युद्धपोत में जो आज कमीशन हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां गए हुए थे विशाखापट्टनम में, जो ये कमीशन हुआ है शिप, ये हमारे पूर्वी बेड़ा यानी ईस्टर्न फ्लीट का पार्ट होगा। तो ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है।
जैसे आपने इंजन की बात की अजय जी, तो अभी इंजन की क्षमता भारत विकसित करने की कोशिश कर रहा है, इस दिशा में कोई प्रयास है?
जी बिल्कुल, प्रयास जारी है और प्रयास करते रहेंगे। करेंगे, बिकॉज ऐसा है कि इंजन वो प्रणाली है कि आपको कोई भी देश दुश्मन नहीं, आपका दोस्त भी नहीं देगा आपको, कोई भी नहीं देगा, तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, गिरते पड़ते बनाते रहिए। जैसे हम छोटे युद्धपोत हैं, छोटे वाले, उनके लिए इंजन हमने बनाना शुरू कर लिया है, अब आगे बढ़ेंगे वो भी आ जाएगा, आज नहीं तो 10 साल में आ जाएगा, मगर वो चल रहा है कार्यक्रम
जी। और जैसे INS तारागिरी की हम बात कर रहे हैं, तो ये दुश्मन के रडार से किस तरह से बचने में सक्षम है, क्या टेक्नोलॉजी है?
एक टेक्नोलॉजी होती है सर, उसको बोलते हैं स्टेल्थ। उसमें एक खास किस्म का डिजाइन होता है बाहर की तरफ, और उस डिजाइन के ऊपर एक खास किस्म का पेंट होता है। अब वो पेंट जो होता है उसको स्टेल्थ पेंट बोलते हैं। दुश्मन का रडार इसको पकड़ने में असक्षम रहता है, या मान लीजिए शिप की लेंथ मान लीजिए 200 मीटर है या 150 मीटर है, तो वो उसको छोटा दिखाता है, तो दुश्मन को लगता है कि छोटी चीज आ रही है। ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसको बोलते हैं रडार क्रॉस सेक्शन RCS। वो पेंट से कम किया जाता है और डिजाइन से कम किया जाता है। जितनी कम उसमें हीट सिग्नेचर होगा, जितने कम उसमें एजेस होंगे, उतना बेहतर होता है।
तो ये INS तारागिरी, जैसे आपने अभी जानकारी दी कि समुद्र से समुद्र में भी मार कर सकता है, समुद्र से सरफेस पे सतह पे थल में भी मार कर सकता है, और एयर में भी कर सकता है, इसके अलावा क्या सबमरीन को भी किसी तरह का ये नुकसान पहुंचा सकता है?
इस पे टॉर्पीडो लगे होते हैं आजकल हर वॉरशिप पे, उनको एंटी सबमरीन वॉरफेयर बोला जाता है। आजकल एक नया रडार आया, उसको बोलते हैं टोड एरे सोनार। वो सोनार नीचे से पकड़ता है, और एक पूरा जंगी बेड़ा जब चलता है, अकेला नहीं चलता है। हमारे श्रोता समझते होंगे कि अकेला युद्धपोत नहीं कहीं भी समुद्र में होता है, 5-6 युद्धपोत साथ होते हैं, पूरा बेड़ा चलता है। उन बेड़ाओं में क्षमताएं होती हैं, कोई नीचे से पकड़ता है, तो इनके पास हर शिप के पास टॉर्पीडो लगा होता है सबमरीन को मारने के लिए। सबमरीन को ढूंढने के लिए अलग से सोनार आता है, वो उसको ढूंढता है, मारता, कोई भी शिप मार सकता है, ऐसा सिस्टम।
और अगर पनडुब्बी से किसी तरह का खतरा हो तो ये अपने को कैसे बचाएगा?
वो टॉर्पीडो वो लगा इनके ऊपर, लैस है ये टॉर्पीडो।
भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की जब हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करना बाकी है भारतीय नौसेना में?
देखिए, पहले तो मैं एक आपको बात बताऊं, कल ही आंकड़े आए हैं, पिछले वित्त वर्ष में हमने करीब 38,400 कुछ करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है रक्षा उद्योग का सामान। ये करीब 14,000 करोड़ रुपया पिछली बार से ज्यादा है। मैं सिंस रक्षा एक्सपोर्ट जो होते हैं वो डॉलर में भी गिने जाते हैं, तो तकरीबन $4 बिलियन का हमने पिछली बार एक्सपोर्ट किया पिछले वित्त वर्ष में। ये आंकड़े आ चुके हैं, सरकारी आंकड़े हैं। इसमें हमें जो करने की बात आप कह रहे हैं, हमें और क्या कर रहे हैं, अभी बहुत बड़ा खेल बाकी है जी। हम अभी सिर्फ खड़े ही हुए हैं
जी,
चलना अभी सीखा है, अभी हमें दौड़ना सीखना है, पेड़ पर चढ़ना सीखना है, मगर सीख रहे हैं, बड़ी तेजी से सीख रहे हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 1500-1600 करोड़ रुपये होता था 12-13 साल पहले, और अभी वो 38,400 कुछ करोड़ पे खड़ा, तो एक ग्रोथ श्रोता समझ ही सकते हैं कितनी ग्रोथ है इसमें।
लेकिन अभी दुनिया की जिस तरह की हालात है, हम पश्चिम एशिया में भी देख रहे हैं कि किस तरह से लड़ाई हो रही है, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत की नौसेना बहुत ही स्ट्रांग हो, और खासतौर से अगर हम चीन के संदर्भ में देखें, चीन की नौसेना जितनी शक्तिशाली है, ऐसे में भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए, या अगर किसी अन्य देश से हमें कोई समस्या होती है उनकी नौसेना का मुकाबला करने के लिए, हम अभी कितने सक्षम है और अभी क्या करना है?
देखिए, पहली बात तो नौसेना की जरूरत क्या है, पहले श्रोताओं को यह समझना होगा, करीब 95% जो हमारा व्यापार है वो समुद्री रास्ते से होता है। सब लोग टीवी में देख ही रहे होंगे कि गैस और तेल से लदे हुए जहाज उनको नेवी निकाल के ला रही है होर्मुज में से, तो आपको एक सक्षम नेवी चाहिए। वो एक जहाज ही नहीं चाहिए आपको, ऊपर सर्वेलेंस के प्लेटफॉर्म चाहिए, ड्रोन चाहिए देखने के लिए, लॉन्ग रेंज प्लेन्स चाहिए जो ऊपर उड़ रहे हैं 30,000 फुट पे और एक पिक्चर प्रोवाइड करें, सैटेलाइट्स, डेडिकेटेड सैटेलाइट्स थल सेना, नौसेना और वायुसेना के पास हैं जो कि नजर रखती हैं सब चीजों पर, कॉन्स्टेंट नजर रखी जाती है। जहां से आप चीन की बात करें, चीन हमसे आर्थिक तौर पर करीब 5 गुना बड़ा है, तो हमें क्षमता चीन की पहले आंकनी चाहिए कि चीन हमसे आर्थिक तौर पर भी बड़ा है तो मिलिट्री तौर पर भी बड़ा ही होगा। हमको अपना कार्य जारी रखना है, कदम ताल तेज करनी है और इस क्षमता को बढ़ाते रहना है। चीन भी अपनी क्षमता बढ़ा रहा है बड़ी स्पीड से, तो हमें और किसी देश, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो मैं हमेशा मानता हूं पाकिस्तान हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देख ही लिया
जी।
जब आप 13 उनके एयरबेस पे बम गिरा सकते हो और आपके एक पे भी ना गिरे तो क्या रह गया, क्या मुकाबला है पाकिस्तान से? मुकाबला चीन से है, और चीन से मुकाबला करने के लिए हमें कदम ताल तेज करनी पड़ेगी।
भारतीय नौसेना में अगर हम देखें कि वायुसेना से किस तरह का तालमेल उनका होता है, या जो वायुसेना वाली क्षमता है जो नौसेना को भी अपनी विकसित करनी पड़ती है, उस दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतीय नौसेना को आप कैसे आंकते हैं?
देखिए, नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यानी युद्धपोत ऐसे हैं जिनके ऊपर से लड़ाकू विमान जहाज उड़ सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। हमारे पास नौसेना के पास करीब 40-42 सिस्टम लड़ाकू विमान है जो उन युद्धपोत पे से उतर सकते हैं और कहीं भी जाकर हमला बोल सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको हम युद्ध विमान वाहक युद्धपोत बोल सकते हैं हिंदी में, वो अगर 500 किलोमीटर दूर खड़ा है तो उसके ऊपर से अगर एक फाइटर जेट टेक ऑफ करेगा तो उस फाइटर जेट की 500 किलोमीटर की और क्षमता बनता है तो आपकी प्रोजेक्शन 1000 किलोमीटर की, अपनी कोच से 1000 किलोमीटर की प्रोजेक्शन आती है। वायुसेना के पास भी सेम जहाज है MiG-29, वायुसेना भी उड़ाती है MiG-29 नौसेना के पास। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें कई सारे एसेट्स ऐसे हैं, जैसे नौसेना एक प्लेन उड़ाती है उसको Boeing P-8i बोला जाता है, उस प्लेन के अंदर एक क्षमता है सर्वेलेंस की, तो उसको अभी जब चीन के साथ मामला चल रहा था 2020-21 में LAC के आसपास, तो उस प्लेन को इस्तेमाल किया गया सर्वेलेंस के लिए, यानी देख रेख के लिए, निगरानी के लिए। सिमिलरली ऐसे ही नौसेना के जहाज एयरफोर्स के साथ ऑपरेट करते हैं, एयरफोर्स जमीन से टेक ऑफ करता है और नौसेना समुद्र से विमान वाहक पोत से भी टेक ऑफ कर सकती है, तो उनकी आपस में तालमेल बहुत अच्छी है। नौसेना वायुसेना के ही जैसे कई सारे सामान उनके कॉमन है, उनकी ट्रेनिंग कॉमन है, पायलट्स की ट्रेनिंग कॉमन है वायुसेना के साथ, तो एक उनकी तालमेल बहुत अच्छा है वायुसेना और नौसेना के बीच में।
जी, और हम थल सेना के साथ अगर तालमेल की बात करें कि किसी भी युद्ध की स्थिति में या देश को जिस रक्षा प्रणाली की जरूरत है उसको विकसित करने के संदर्भ में देखें, तो थल सेना और नौसेना में किस तरह का सामंजस्य?
जी, मैं आपके श्रोताओं को बताऊं, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इनको बोलते हैं एम्फीबियस ब्रिगेड। अब इसको मैं सरल शब्दों में बता दूं तो नौसेना के पास ऐसे पोत हैं जिनके अंदर उनके आप धकेल सकते हैं कोई 10-12 टैंक और तकरीबन हर पोत के अंदर, युद्ध पोत के अंदर कोई 2 से 2500 सैनिक, और उन युद्ध पोतों के पास ऐसी क्षमता है कि वो बिना बर्थिंग जट्टी, जहां पर समुद्र की आपको देखा होगा कभी समुद्री जहाज आके बर्थ के पास रुकता है, उनको उस बर्थ की जरूरत नहीं है, वो वहीं से अपने आप को खींच लेते हैं और कोस्ट पे यानी बीच पे यानी समुद्र तट पे वो 2-2500 सैनिकों को और 10-12 टैंक को वहीं पर ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास खास युद्ध पोत हैं जो कि थल सेना के साथ ऑपरेट करते हैं, ऐसी कमांड बनी हुई है जो कि ऑपरेट करती है अंडमान निकोबार के द्वीपों पर।
जी, तो अगर हम इस दृष्टि से देखें कि भारतीय नौसेना जिस तरह से विकास कर रही है और हम अपनी जरूरत के हिसाब से बहुत ही सारगर्भित तरीके से हम जिस तरह के युद्ध पोत बना रहे हैं अपनी जरूरत के लिए, अब कब ऐसी स्थिति आएगी कि हम जो नौसेना युद्ध पोत बना रही है इनका निर्यात करने की स्थिति में आएंगे?
हमारे पास शिपयार्ड्स हैं जो कि रक्षा मंत्रालय के अंदर हैं। मैं कुछ के नाम लेता हूं, जैसे आज तारागिरी जो है ये मजगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई ने बनाया है, विशाखापट्टनम में है, गोवा में है, कलकत्ता में है, ऐसे कई सरकारी शिपयार्ड हैं जो कि रक्षा मंत्रालय के अंदर हैं। ये जो शिपयार्ड हैं ये नौसेना के साथ तालमेल बनाकर रखते हैं। कुछ छोटे जहाज जिनको NOP भी बोला जाता है, यानी कि समुद्र तट के आसपास पेट्रोल वेसल्स बोलते हैं उनको, पेट्रोल वेसल बोला जाता है, छोटे जहाज होते हैं 70 मीटर से 60 मीटर के, वो बना के हम कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ हमने अपने फ्रेंडली देशों को मालदीव्स, मॉरिशस, इनको गिफ्ट भी कर रखे हैं, शेशल्स को दे रखा है, प्लेन भी दे रखे हैं, सर्वेलेंस प्लेन जिन्हें निगरानी रखने वाला प्लेन बोला जाता है वो भी दे रखे हैं, डोर्नियर, और ऐसे जहाज भी दे रखे हैं। हमने कई आसपास के देशों के साथ क्रेडिट लाइन खुली हुई है जो हमारी विदेश मंत्रालय है उसको कोऑर्डिनेट करता है, और ये क्रेडिट लाइन्स खुली हुई है और उनको हम ये चीजें भी प्रोवाइड करते हैं हमारी बनाई हुई। तो ऑलरेडी कुछ एक्सपोर्ट छोटे लेवल पे हो रहा है, पर अभी जितने भी हमारे शिपयार्ड हैं वो अभी बहुत बिजी हैं हमारी नेवी की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए। जैसे आपने खुद ही इस प्रोग्राम के शुरू में बताया 19 या 20 युद्ध पोत अगर आपने इस साल बनाने हैं तो अगले साल 19-20 की तैयारी है।
जी,
तो जब वो तैयारी हम करेंगे तो उसके लिए जगह नहीं है उतनी, और वर्कफोर्स उतनी है और पैसे उतने हैं और जगह उतनी है, मटेरियल सप्लाई उतनी है, तो अभी तो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट ही पूरी हो रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है मगर थोड़ा हो रहा है।
तो अभी जैसे पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है तो बार बार बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र होता है, तो हमारे जो युद्ध पोत अभी हैं और आगे बनने वाले हैं वो कितने इक्विप्ड हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स या और भी जो उन्नत किस्म की मिसाइल्स हैं?
देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल की प्रणाली समझनी पड़ेगी हमारे श्रोताओं को। बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादातर हम लोग लॉन्च करते हैं लैंड से, बिकॉज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने का एक प्रक्रिया है, शिप पे से लॉन्च होती हैं, बड़े बड़े मुल्कों के पास हैं जैसे अमेरिका के पास हैं, उनके पास युद्ध पोतों का साइज बड़ा है, हमारे युद्ध पोत अभी उतने बड़े नहीं है, जैसे विक्रांत है, INS विक्रांत विमान वाहक युद्ध पोत है, विक्रमादित्य है, वो करीब 47,000 टन 50,000 टन के, अमरीकी युद्ध पोत करीब 1,00,000 टन के हैं, उनके पास जगह है। दूसरी चीज ये है बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैजेक्टरी होती है, किलोमीटर की रेंज होती है, अगर उसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है या 4,000 किलोमीटर है तो उसको आप लैंड से लॉन्च करेंगे, छुपा के लॉन्च करेंगे और समुद्र में नहीं लेके जाएंगे, तो इनके पास जरूरत होती है, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि 70-80 किलोमीटर पे कोई खतरा है तो उसको मार गिराने की, या ब्रह्मोस 300 किलोमीटर मार गिराने की क्षमता रखते हैं वो।
जी,
तो उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, थल सेना की रिक्वायरमेंट और वायुसेना की रिक्वायरमेंट कुछ और है, रिक्वायरमेंट्स फर्क है।
जी, अजय बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।
आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में